1 फरवरी 1979 की शाम को एयर फ्रांस के खास तौर पर चार्टर किए गए बोइंग 747 द मे फ्लावर ने पेरिस के दगाल हवाई अड्डे से तेहरान के लिए टेक ऑफ किया। उस पर सवार था ईरान के शाह के खिलाफ हो रही क्रांति का नायक आयतुल्ला रोहिल्ला खुमैनी।
दिस इज द मैन दे कॉल द फादर ऑफ द रेवोल्यूशन एंड दिस इज द मोमेंट दैट मिलियंस इन ईरान हैव बीन वेटिंग फॉर।
16 वर्ष तक पहले इराक और फिर पेरिस में निर्वासन में रहने के बाद खुमैनी अपने वतन लौट रहे थे। विमान पर चढ़ते ही वो विमान के ऊपरी हिस्से पर चले गए। मशहूर ईरानी पत्रकार मोहम्मद हैकाल अपनी किताब द रिटर्न ऑफ आयतुल्ला में लिखते हैं,
जहाज में बैठते ही खुमैनी उसके ऊपरी हिस्से में चले गए। उन्होंने पहले वजू किया, नमाज पढ़ी, थोड़ा सा दही खाया और विमान के फर्श पर तोशक बिछा कर सोने चले गए। विमान के निचले हिस्से में उनका दल और करीब 100 पत्रकारों का समूह बैठा हुआ था। सुबह 5 बजे आयतुल्ला की आंख खुली। जैसे ही विमान ने ईरान की वायु सीमा में प्रवेश किया, ABC न्यूज़ के संवाददाता पीटर जेनिंग्स ने उनसे पूछा, ईरान में वापस लौटते हुए आपको कैसा लग रहा है? हिची, आयतुल्ला ने जवाब दिया, यानी कुछ भी नहीं। उनके फारसी अनुवादक सादिक गौतबजादे ने आश्चर्य से पूछा, हिची? खुमैनी ने फिर जोर देकर जवाब दिया, हे चाह सौसी न द्वारम, यानी मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा।
ऊपर से देखने पर मीलों तक लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। शाह की बादशाहत का अंत बहुत तेजी से हुआ। 16 जनवरी 1979 को शाह ने आखिरी बार ईरान से उड़ान भरी। वो मिस्र जा रहे थे और अपना विमान खुद उड़ा रहे थे। वैसे उनके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार चाहते थे कि वो और पहले ही ईरान से चले जाएं।
देरी इस वजह से हुई कि शाह अपने साथ कुछ शाही जवाहरातों को ले जाना चाहते थे। ये सब जवाहरात वहां के केंद्रीय बैंक बैंक मिल्ली के सुरक्षित सेफ में रखे हुए थे, लेकिन उन दिनों बैंक में हर जगह की तरह हड़ताल चल रही थी। शाह ने अपने सैनिकों को इस निर्देश के साथ वहां भेजा कि वो बैंक अधिकारियों से जबरदस्ती उस सेफ को खुलवाएं। लगातार 6 दिनों तक सैनिक वो जवाहरात लेने बैंक गए और हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। शाही खजाने को सुरक्षा की दृष्टि से जमीन से 20 मीटर गहराई में बनी सेफ में रखा गया था। जो लोग उस सेफ को खोलना जानते थे वो बैंक से गायब हो गए। आखिर में खजाने को सुरक्षित रखने के लिए शाह ने जो सावधानियां बरती थीं वही उनके खिलाफ गईं। शाह को बिना जवाहरातों और ताज के ईरान छोड़ना पड़ा। इन जवाहरातों का उस समय $500 अरब का बीमा कराया गया था। ये खजाना आज भी ईरान के बैंक में सुरक्षित है।
जैसे ही शाह के जाने की खबर फैली, पूरा तेहरान सड़कों पर आ गया। उस समय कुलदीप सहदेव तेहरान के भारतीय दूतावास में सेकंड सेक्रेटरी थे।
ये समझिए कि सारा तेहरान सड़कों पर निकल आया। जैसे छुट्टी डिक्लेयर कर दी और सब पार्टी के लिए निकले और हम भी देखने के लिए अपनी पत्नी और दोस्त छोटे बच्चे थे अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़े और सड़कें खचक खच भरी हुई थी। एक एक इंच करके गाड़ी आगे जा रही थी, चारों तरफ लोग और खिड़कियों को वो कहते थे खोल दीजिए और खिड़कियों के बीच में से मिठाइयां तरह तरह की फेंक रहे थे सेलिब्रेशन के और स्लोगन था मर्ग बर शाह डेथ टू द शाह। तो और वो सब कहते थे कि हॉर्न भी आप उसी तरह से बजाइए, मर्ग बर शाह मर्ग बर शाह।
आयतुल्ला के विमान में मोहसिन सजेगारा भी सवार थे। वो पेरिस में आयतुल्ला खुमैनी के लिए काम कर रहे थे। योजना ये थी कि ईरान तभी लौटा जाए जब वहां क्रांति की सफलता के बारे में कोई संदेह न रह जाए। शाह जाते जाते डॉक्टर शाहपुर बख्तियार को ईरान का प्रधानमंत्री बनाकर गए थे। मोहसिन को फिक्र थी कि जब खुमैनी ईरान लौटेंगे तो बख्तियार उनके साथ किस तरह पेश आएंगे।
I remember one night we had a tough discussion with him that it might be dangerous. Bakhtiar is still powerful enough to.
मुझे याद है एक रात हमने आयतुल्ला खुमैनी से तगड़ी बहस की कि उनका ईरान जाना खतरनाक हो सकता है। बख्तियार अभी भी सत्ता में है और वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि क्या होने वाला है।
लेकिन आयतुल्ला को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। विमान में उनके साथ करीब 100 पत्रकार भी चल रहे थे। उन्हें इसलिए लाया गया था कि ईरान की सरकार उनके विमान पर गोलाबारी कर उसे नीचे न गिरा दे।
He said to his son, who you know sat down besides to him, that the name of his son was Ahmad. Said that Ahmad, watch that our passports not to be lost.
Khomeini ne apne bete se, jo ki unki bagal mein baitha hua tha, usse kaha, in passporton ko sambhal kar rakho. Unke bete ka naam tha Ahmad. जब मैंने उनके मुंह से ये वाक्य सुना तो मैंने अपने मन में सोचा कि इस शख्स को ये एहसास ही नहीं है कि वो ईरान का सबसे बड़ा नेता बनने जा रहा है।
उनकी पहली चिंता थी कि उनका जहाज तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर लैंड तो करे। जब वो तेहरान पहुंचे तो उनका जहाज शहर के ऊपर 20 मिनट तक चक्कर लगाता रहा। विमान पर सवार लोगों के दिल की धड़कने बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंततः वो समय आया जिसका सबको इंतजार था।
After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil. It was a homecoming to end all homecomings, a moment of triumph that had finally been forced on a reluctant government by the stubbornness of this man.
हवाई अड्डे पर स्थिति नियंत्रण के बाहर थी। आयतुल्ला को नीले और सफेद रंग की कैटलेक कार में बैठाया गया। जैसे ही कार बढ़ी, लोगों का हुजूम उसके पीछे दौड़ा। हवाई अड्डे का टर्मिनल तो खचाखच भरा ही था, बाहर भी लोगों का अथाह सागर।
Nobody could possibly know how many millions lined the route of his 20-mile drive through Tehran, but it could not have been less than 3. They'd come from all over the country to see the man they acknowledge as the only true leader of Iran. And nothing was going to stop them getting even the briefest of glimpses.
Ayatollah Khomeini ko Behesht-e-Zehra kabrgah le jaya ja raha tha, jahan unko bhashan dena tha. Mohsin Sazegara unki kaar ke theek piche the.
I was supposed to be with the journalists with some minibuses to follow the Ayatollah to the cemetery. But it didn't work.
मैं कुछ पत्रकारों के साथ मिनी बस पर सवार था जो आयतुल्ला की कार के पीछे चल रही थी, लेकिन उनकी कार आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि लाखों लोग सड़क पर आ गए और उनके पीछे आ रही कारों को एक इंच भी बढ़ने का मौका नहीं मिला।
अंत में लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि खुमैनी को अपनी कार छोड़नी पड़ी और वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर पर बेहेश्त-ए-ज़हरा पहुंचाया गया। मोहसिन और उनके साथ चल रहे पत्रकारों को भी अपनी मिनी बस छोड़नी पड़ी। पत्रकार होटलों की तरफ गए और मोहसिन ने अपने घर का रुख किया।
My father was alone in the house. Everybody, my mother, my sisters, my brothers, they went out to join the other people to say welcome to Ayatollah.
So मेरे पिता अकेले घर में थे। हर कोई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, सब आयतुल्ला का स्वागत करने के लिए सड़कों पर निकले हुए थे। मेरे पिता को मेरा राजनीतिक कार्यकर्ता होना पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला और मेरी ओर देखा तो जिंदगी में पहली और आखिरी बार उन्होंने मुझे गले लगाकर प्यार किया। उन्होंने कहा, मुबारक हो मेरे बेटे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग शाह को भगाने में सफल होगे।
23 साल के मोहसिन के लिए ये गर्व का क्षण था। उधर बेहेश्त-ए-ज़हरा में खुमैनी ने ऐलान किया,
मैं दौलत तायिन मिकुनम, मैं तो दहन इन दौलत मिकुनम, मैं दौलत तायिन मिकुनम।
शाह और उसके द्वारा नियुक्त की गई सरकार गैर कानूनी है। अगर वो अपने आप नहीं हटते तो उन्हें अपराधी समझा जाएगा। मैं इस देश की मदद से नई सरकार की नियुक्ति करूंगा। मैं इस सरकार के दांतों को तोड़ दूंगा।
देश वापस लौटने के 4 दिन के भीतर खुमैनी ने मेहंदी बजरगान को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। करीब 5 दिन तक ईरान में सत्ता के 2 केंद्र रहे। आखिरी हथियार के तौर पर बख्तियार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया। खुमैनी ने कागज पर अपने हाथ से लिखा, कर्फ्यू का उल्लंघन करो। उस कागज को टेलीविजन सेंटर से बार बार फ्लैश किया गया। लाखों लोग सड़कों पर फिर उतर आए।
They started to attack to police stations, and all that night, that long night, I can say, I was awake. Sometimes I went to the streets.
उन्होंने पुलिस थानों पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरी रात मैं जागता रहा। जब मैं सड़कों पर गया, तो मैंने देखा लोग पुलिस थानों के साथ साथ सेना की छावनियों पर भी हमला कर रहे थे और वहां से बंदूकों को लूट रहे थे।
In a day-long orgy of violence, the people seized control from the Shah's government and all it stood for. Army barracks were plundered and guns distributed almost like confetti. They toppled statues of the Shah and sent soldiers and police running for their lives. Gunmen loyal to the Ayatollah Khomeini assaulted the Iranian parliament.
15 फरवरी की रात को वायुसेना कमांडर जनरल अमीर हुसैन रबी को गोली से उड़ा दिया गया। तेहरान के सैनिक गवर्नर जनरल अमीर रहीमी का भी यही हश हुआ, लेकिन रहीमी ने मरते समय शाह जिंदाबाद का नारा लगाया। जनरल नसीरी और जनरल होसरोदात को भी अलावी स्कूल की छत पर गोली मारी गई।
शुरू से रोज एग्जीक्यूशन हो रही थी, शाह के जो लोग थे जो भागे नहीं उनको रोज अखबार में भरा होता था, दर्जनों लोग की एग्जीक्यूशन की जा रही थी और सबको बिफोर एंड आफ्टर फोटो उनके अखबार में आते थे। खुवैदा जो प्रधानमंत्री थे ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू बी एग्जीक्यूटेड, और खलत बारी फॉरेन मिनिस्टर, फिर जो लोकल कमांडर थे आर्मी के उनको, तो इस तरह के मेरा ख्याल कुछ 300 लोग तो मारे गए। तो ये तो पहले कुछ हफ्तों में, और हम सब उनको जानते थे तो काफी जरा ग्लूमी सा सिचुएशन था।
कम लोगों को पता है कि खुमैनी के दादा बाराबंकी के पास कुंतूर गांव के रहने वाले थे जो सालों पहले इराक जाकर बस गए थे। बीबीसी मॉनिटरिंग सेवा और ईरान के मामलों के जानकार राकेश भट्ट कहते हैं,
उत्तर प्रदेश का बारामक्की नाम का जो जिला है, रोहल्ला खुमैनी के दादा जिनका नाम सैयद अहमद मूसवी हिंदी, सन 1790 में बाराबंकी के किंतूर गांव में जन्मे थे और 40 साल की उम्र में अवध के नवाब के साथ धर्म यात्रा पर इराक और ईरान गए और वहां के धार्मिक स्थलों की जियारत के पश्चात ईरान के खुमैन नाम के गांव में बस गए और यहीं से उन्होंने अपना उपनाम या सरनेम जिसे कहते हैं वो खुमैनी रखा। यूं उनके पूर्वजों का जो सरनाम है वो मूसवी हिंदी है।
तत्कालीन भारत सरकार ने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, खुमैनी के इस भारत संबंध को भुनाना चाहा। आनन फानन में पूर्व मंत्री अशोक मेहता के नेतृत्व में खुमैनी से मिलने के लिए एक सद्भावना प्रतिनिधिमंडल ईरान भेजा गया, जिसमें लखनऊ के शिया धर्मगुरु आगा रूही अवाकदी भी थे। मशहूर पत्रकार सईद नकवी कहते हैं,
अटल जी ने मुझसे बात की, कहने लगे भाई क्या करें, कोई कांटेक्ट है? हमने कहा था आपको ये मालूम है कि आयतुल्लाह खुमैनी जो हैं इनके खानदान वाले एक जगह है कुंतूर, जो कि एक शियों का बहुत बड़ा मरकज़ है लखनऊ से 20-30 किलोमीटर दूर, ये वहाँ के ख़ानदान हैं, ये यहाँ पैदा हुए हैं, कोई इनके एतराफ़ में कोई इनके घर वाला है? मैंने कहा आगा रूही अबकाती ये मुल्ला है वहाँ का, ये ही रिलेटिव ऑफ इमाम खुमैनी। बुलाया गया, अटल जी ने फौरन ना आओ देखा ना ताओ एक डेलीगेशन तैयार किया। उस डेलीगेशन के हेड बने अशोक मेहता, जो कि चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, सोशलिस्ट लीडर तैयब जी उसमें लाए गए, और ये इन दोनों की मातहती में आगा रूही अबकाती ये डेलीगेशन पहुंचा तेहरान। आयतुल्लाह खुमैनी से बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस मिल गया था, बैक चैनल क्या था, बैक चैनल का बाप था ये। तो अब जनाब जब वहाँ पहुँचे जुमरान जहाँ आयतुल्लाह रहते थे, तो वहाँ पे जब ये डेलीगेशन आने लगा तो दरवाज़े पे आयतुल्लाह खुमैनी ने इशारा किया कि रुको, और फिर इससे कहा कि तुम आगे आओ आगारूही से। आगारूही आगे आए और उसके बाद उन्होंने साहब बज़ुबान फ़ारसी वो उनको गिन गिन के सुनाई कि लोग सब हक्का बक्का। आगारूही रोने लगे कहें, और ये लोग उनको गले लगाएं कि क्यों, कि हाँ तुमसे किसने कह दिया कि तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, तुम कौन होते हो हमारे इस रेवोल्यूशन को इस तरह से मार्केट करने वाले, लेने के देने हो गए। अब जनाब ये क्यों हुआ? तब इनका रेवोल्यूशन मासूम था, कमज़ोर था, वो समझते थे कि लोग यहाँ ईरानियन नेशनलिज्म जो है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उनका सबसे बड़ा लीडर किसी और देश से ओरिजिनेट किया है।
ईरान में स्थायित्व आते आते 6 महीने लग गए। जैसे ही खुमैनी ने शतरंज की बिसात पर अपने विरोधी के आखिरी प्यादे का सफाया किया, उनके मुंह से निकला शाह मात। उन्होंने 19 साल पहले शाह के खिलाफ शुरू की गई लड़ाई जीत ली थी। ईरान उनका था, उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला अब कोई नहीं था। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।